आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से हुआ शुरू। 24 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में विभिन्न विभागों की अनुपूरक मांगों समेत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में होगी विशेष चर्चा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन सिरप मामले से जुड़ी 30 याचिकाओं को किया खारिज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राज्य स्तरीय SIT कर रही है मामले की जाँच। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में लगभग 138 करोड़ रुपए की लागत से बने रेल ओवर ब्रिज का किया लोकार्पण। कहा, विरासत और विकास के समन्वय से प्रदेश को मिली नई पहचान। और राजस्व लेखपाल भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगतियों पर मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद राजस्व परिषद कर रहा रिक्तियों की श्रेणीवार समीक्षा। भर्ती को लेकर भेजा जाएगा संशोधित अधियाचन। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन वर्तमान विधानसभा के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य सुधाकर सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की गई और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही सोमवार को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी ने शिक्षा संबंधी मामला उठाया। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा को नया आयाम देने की दिशा में काम कर रही है। विधानमंडल सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा। सत्र शुरू होने से पहले एक पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि
उत्तर प्रदेश की जनता के हित में और उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए तमाम अन्य कार्यों को आगे बढ़ाने, विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने और विभिन्न विभागों में जो नई मद है उनके लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स के लिए भी यह शीतकालीन सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण चर्चा और वंदे मातरम गीत के रचयिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सामने होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा कराने को पूरी तरह तैयार है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सत्र उत्तर प्रदेश विधानमंडल और राज्य के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। संसद के दोनों सदनों को कल अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दिया गया। इसके साथ ही 1 दिसंबर को शुरू हुआ 19 दिन का शीतकालीन सत्र सम्पन्न हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन भाषण में कहा कि सदन में लगभग 111% कामकाज हुआ। राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन ने कहा कि सदन करीब 92 घंटे चला और 121% कामकाज हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन आधारित कफ सिरप के अवैध भंडारण और वितरण से जुड़े मामलों में दर्ज FIR को चुनौती देने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली 30 याचिकाओं को कल खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने पारित किया। याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने पक्ष रखा। सरकारी पक्ष के वकील ने बताया कि जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई जारी रख सकती हैं।
अपर महाधिवक्ता श्री अनूप त्रिवेदी साहब ने सरकार का पक्ष रखा। उत्तर प्रदेश सरकार का जो पक्ष था, उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना था कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में विभिन्न औषधि स्टॉकिस्ट को हमने लाइसेंस दिया था, लेकिन वो लगातार इसका दुरुपयोग कर रहे थे, जो कि नारकोटिक्स के परिधि में आता था, क्योंकि जो फेसिबल सिरप है उसमें जो एक नारकोटिक सब्सटेंस था कोडीन, जो कि नारकोटिक्स के अंतर्गत आता। इसमें माननीय न्यायालय ने इस बात पर गंभीरता से विचार करते हुए सभी पिटिशनर को दोषी ठहराया।
उधर कोडीन मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले पत्रकार वार्ता में कहा कि कोडीन फॉस्फेट NDPS अधिनियम के अंतर्गत आने वाली एक औषधि है। उन्होंने बताया कि इस कफ सिरप का कई स्थानों पर नशीले पदार्थ के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा था। अवैध तस्करी की शिकायतें मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्रवाई की गई।
ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा FSDA, UP पुलिस और STF इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी, क्योंकि SIT एक राज्य स्तर की SIT इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम गोरखपुर में करीब 138 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ गोरखपुर रेल मार्ग के डोमिनगढ़ एवं गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे क्रॉसिंग 162 ए पर रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों और वंचितों के हित के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरासत और विकास के समन्वय से उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिली है।
हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो, हर गरीब को उपचार की सुविधा प्राप्त हो, हर गरीब के घर में रसोई गैस का चूल्हा हो, हर एक नागरिक को बिना भेदभाव के बिजली की सुविधा उपलब्ध हो, तब हो पाया जब डबल इंजन की सरकार ने सामूहिक प्रयास से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट नहीं है। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर अपनी एक नई आभा के साथ अपने आप को एक नई पहचान दे रहा है, विकास और विरासत का बेहतरीन केंद्र बना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ बैठक कर मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेला की तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिचड़ी मेला से पहले नववर्ष के प्रथम दिन ही गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इसे खिचड़ी मेला प्रबंध के रिहर्सल के रूप में लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने 11 से 13 जनवरी तक आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को प्रतिभा प्रदर्शन का भरपूर मौका दिया जाए। राजस्व लेखपाल भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगतियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी के बाद राजस्व परिषद श्रेणीवार रिक्तियों की दोबारा समीक्षा कर रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजस्व परिषद भर्ती को लेकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दोबारा संशोधित अधियाचन भेजेगा। इस प्रकरण में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था का अक्षरशः पालन अनिवार्य है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आरक्षण से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। प्रदेश में भीषण शीतलहर और कोहरे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कोहरे के चलते हवाई और रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। नागर विमानन मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय ने यात्रियों को यात्रा से पहले अधिकृत स्थानों से जानकारी लेने की सलाह दी है। उधर मौसम विभाग ने प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में आज घने कोहरे और शीत दिवस का रेड अलर्ट जारी किया है। भीषण शीतलहर एवं घने कोहरे की चेतावनी के मद्देनजर राहत आयुक्त कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम से आमजन को एसएमएस के माध्यम से खराब मौसम की चेतावनी भेजी जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से अपील की है कि वे भीषण ठंड से बचें। कोहरे के प्रकोप को देखते हुए उन्होंने अनावश्यक यात्रा न करने की भी सलाह दी है। दक्षिण अफ्रीका के साथ 5 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला को भारतीय टीम ने 3-1 से जीत ली है। कल अहमदाबाद में खेले गए 5वें और अंतिम मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से पराजित किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 231 रन बनाए, जवाब में प्रतिद्वंदी टीम 201 रन ही बना सकी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से हुआ शुरू। 24 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में विभिन्न विभागों की अनुपूरक मांगों समेत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में होगी विशेष चर्चा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोडीन सिरप मामले से जुड़ी 30 याचिकाओं को किया खारिज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राज्य स्तरीय SIT कर रही है मामले की जाँच। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में लगभग 138 करोड़ रुपए की लागत से बने रेल ओवरब्रिज का किया लोकार्पण। कहा विरासत और विकास के समन्वय से प्रदेश को मिली नई पहचान। और राजस्व लेखपाल भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगतियों पर मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद राजस्व परिषद कर रहा रिक्तियों की श्रेणीवार समीक्षा। भर्ती को लेकर भेजा जाएगा संशोधित अधियाचन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।